तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरणवंदन जाहोते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिकेतांग नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशी करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरणमभीक्ष्णश जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीगौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व अभिष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती रथारणी की जय। ब्रजदेवी गण की जय। जय कार्तिकपद नियम सेवा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत की जय। जय चतुर्मास्य व्रत की जय। व्रतपालनकारी भक्तवृंद की जय। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमाकारी भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। अभी हम लोग गुरुपाद एवं वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से ये कार्तिक व्रत नियम सेवा का कुछ अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं कर रहे हैं। अभी कहते हैं यदि भगवान के सेवा को कर्म के साथ सामंजस्य की जाए, एक कर्मी भी कर्म करता है सुबह से शाम तक, एक भगवत भक्त भी भगवान की सेवा के लिए प्रचुर चेष्टा परायण है, तो दोनों कर्मी क्या कर्म और भगवान भक्तों की सेवा दोनों क्या एक हो जाएगा? कहते हैं कर्म के द्वारा बंधन होता है, तो इसलिए भगवान की सेवा भी कर्म ही है। ऐसा कह करके यदि कोई भगवत सेवा को त्याग देते हैं कि मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगा, जैसे वसुदेव महाराज द्वारकापुरी में जब विराजमान हैं उस समय नवजीवंद्र ऋषि कृष्ण दर्शन के लिए आए, नारद जी भी आए। ऋषियों ने पहले बतलाया कि महाराज आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ अनुष्ठान उन्होंने किया तो उस समय नारद ऋषि आ गए। जैसे नारद ऋषि आ गए उन्होंने यज्ञ बंद कर दी और यज्ञ का फल मुझे मिल गया। जब उनकी पूजा की, आसन दिया, विधिवत चरण धोया, पाद्य अर्घ्य आचमन और माल्यार्पण वस्त्र आदि से अलंकृत किया, तो उनके निकट पूछने लगे कि हमने अपने मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं की, कुछ साधन किया नहीं, हम इसी में ही रमे रहे हैं, तो अब आप कृपा करके बतलाइए हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो इस बात को लेकर के न सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं यदि हम भगवत सेवा भी करेंगे इसमें तो मेरा मुक्ति नहीं मिलेगा, ये भी बंधन है, हाँ कर्म बंधन है, और इसके द्वारा जन्म जन्मांतर नष्ट होगा, भोग करना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं कि प्रापंची कतया बुद्धा हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्ष भी परित्याग वैराग्यम फलगु कथते। यदि भगवान के सेवा को प्रापंची कोई ज्ञान करे और साधारण बुद्धि करे, कर्म के अंतर्गत समझे, तो वो फलगु वैरागी है, अर्थात फल्गु नदी के जल जैसे ऊपर से नहीं दिखाई देता, अंदर अंदर स्रोत प्रवाहित है, ऐसे भगवत सेवा को यदि छोड़ देता है और उसको भी साधारण प्राकृतिक ज्ञान करते हैं और सेवक को यदि अवज्ञा अनादर करते हैं, तो वो व्यक्ति का उद्धार तो बहुत दूर की बात है, मुक्ति की तो बात ही क्या, वो अनर्थ के अंदर में समा जाएंगे। इसलिए भगवान के निकट सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि कोई मुझे कर्मी कहे, ज्ञानी कहे, योगी कहे, भोगी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जसदा माता की तरह ये बाल गोपाल रूप की सदा सर्वदा आकांक्षा रखता हूँ और किसलिए मैं सेवा कर सकूँ, क्योंकि जब गोपाल है तो सेवा देते हैं, और जब भगवान नारायण है सर्वसंपन्न, सर्वगुण संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, तो उनकी सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। गोपाल तो कुछ बोलेगा नहीं, गोदी में ले लो, लाड़ लड़ाओ, प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, डांट लो, कुछ भी कर लो, वो बोलेगा नहीं है, और नहीं गोदी लेने से रोएगा और प्यार नहीं मिलने से मचलेगा है, और बर्बादी भी करेगा, खाएगा भी, उधम भी करेगा है, तो एक उसके अंदर में है एक ममता है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं एक समय जसदा माता घर के आंगन में कृष्ण को लाल लाल दुलार करती है, अर्थात प्यार करती है, उनको खिलाती पिलाती है, गोदी में लेती है, कभी स्तनपान कराती है। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्वासा ऋषि आए देख करके जसदा माता जल्दी करके आसन बिछाया और उनके लिए फूल माला चंदन सब व्यवस्था करने के लिए चेष्टा की और बोल दिया। दुर्वासा ऋषि खड़े के खड़े रह गए, बोले अब तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा और तेरे घर में कुछ खाऊँगा भी नहीं और तेरे पूजा भी स्वीकार करूँगा नहीं, कारण तेरे घर में तू तो अकेली थी, ये बालक कहाँ से आ गया बच्चा, ये तो घर को गंदा बना के रखा है और तू भी झूठा हो गया, तेरे स्तनपान करते तो झूठा मुँह धोता नहीं और तू मेरे को कैसे सेवा करेगी, अर्थात मैं तेरा छुआ हुआ कैसे खाऊँगा और तेरे आसन में कैसे बैठूँगा, मेरा सब जोग भ्रष्ट हो जाएगा है? अब तो तेरे झूठा मोटा पवित्रता का ज्ञान नहीं, अपवित्र हो गई, तेरे गोदी में कभी उल्टी पलट कर पलटी कर दे, कभी झूठा मोटा गंदा मंदा लेके तेरे गोदी में चढ़ जाए और तू अब बालक को प्यार करती है, अब साधु संतों की सेवा भगवत से तू अब ये बहिष्कृत हो गई। जसदा माता डर गई, कहते अब क्या होगा। इतने में ऋषि खड़े हैं, कृष्ण क्या किया, एकदम गायों के गोबर और गायों के गोमूत्र के अंदर में जा करके लोटपोट खाया और सारे शरीर में मल लिया। जसदा माता देख रहे हैं कि इसको मैं देखभाल नहीं करती हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, और ऋषि की देखभाल नहीं कर दो अपराध के कारण अभिशाप से तो हमारा वंश भी नाश हो जाएगा, क्या करें अब। लाला बोले अच्छा अभी दिखाता हूँ तुमको, झटपट जा करके ना जैसे बच्चे पेड़ में चढ़ते हैं, दुर्वासा ऋषि के हैं बस पकड़ लिया, गोबर गोमूत्र और ये लेकर के उनके पैर पकड़ करके सर पर चढ़ चढ़ते छाती पकड़ करके बाल पकड़ करके सर में कंधे में बैठ गया जाके, और हाथ को लेकर के लड्डू खा रहा था मुंह में ठूस दिया। अब ले ऋषि क्या करेगा, कर कहाँ जाएगा अब, और जब तक खाया नहीं मुंह में गया तो फेंक नहीं सकता अब। क्यों फेंकने से डर है, झूठन यदि गिर गया कोई खा लिया तो फिर भी जोग भ्रष्ट हो जाएगा, इससे जोगी अपने झूठन को किसी को नहीं देता है, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। इस डर के मारे एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को बोला, महाराज हमारा एक प्रार्थना है, मैं आपका दासानुदास हूँ और आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करो। बोले क्या, बोले जी युधिष्ठिर महाराज वन में हैं, हमारे बड़े भाई है और वो पांचों भाई है, द्रौपदी है, आप एक बार उनके यहाँ जाओ आतिथ्य ग्रहण करो अर्थात उनके सेवा स्वीकार करो। हैं आप सबके उपकार करते हैं, हमारे भाई के लिए भी सोचो, वन में भटक रहा है हैं कष्ट पा रहा है, क्योंकि चालाक चतुर लोग आँतों में जहर है तो दांतों में मिठास है, मुंह में बड़ा मिठास है, बड़े सुंदर चिकनी से बड़ी सजा करके बातें करना जानते हैं, क्योंकि यह इसका नाम है राजनीति हैं, ये धर्मनीति नहीं है। तो वो कुट है, एकदम कूटनीतिवाद है, वो जाकर के दुर्वासा को ऐसे पैर पलोटा, ऐसे सेवा किया, राजी कर दिया, महाराज आपको कै बजे जाना है, 12 बजे मत जाना, क्योंकि 1 बजे भी मत जाना, 2 बजे भी नहीं, 3 बजे जाना। बोले ऐसा क्यों, और महाराज वन में रहते हैं ना तो साग फल फूल इकट्ठा करने में तो टाइम तो लगेगा ही, और बनाने में तो टाइम लगेगा, अब आप जाएंगे तो आपका आतिथ्य तो कैसे हो सकता है महाराज, तो इससे थोड़ा लेट जाना। तो महाराज बोले अच्छा तुम्हारा जैसे आदेश निर्देश या तुम्हारा अनुरोध है स्वीकार करता हूँ, महाराज अकेले मत जाना, आपके जितने शिष्य 60,000 सबको लेके जाना, दर्शन देना। बोले वाह ये भी अच्छी बात है, कहीं जाना है तो अकेले जाना भी अच्छा नहीं है, शिष्यों के साथ जाना चाहिए। तो पहुँच गए, पहुँचते ही युधिष्ठिर धर्मराज मैं आ गया, अच्छे महाराज बहुत अच्छे, अरे मैं भूखा हूँ, कितने दिन से भोजन नहीं किया, अभी मेरे को भोजन करना है। युधिष्ठिर महाराज भागे भागे गए द्रौपदी को बोला, द्रौपदी भाई महाराज आ गए, ऋषि आ गए, और अकेले नहीं 60,000 ऋषियों को लेके, सारे ऋषियों को जहाँ जहाँ भजन करते सबको निमंत्रण दे दी, सबको इकट्ठा कर ली हैं, अब सब आ गए, सबको भोजन करना है। द्रौपदी बोले मैं तो भोजन कर ली, आप लोग को भोजन करा करके जो कुछ बचा था मैंने भोजन कर लिया, क्योंकि उनका एक वरदान था, जब तक वो भोजन नहीं करेगी, उनके बटलोई थी सूर्य के दिए हुए, सूर्य देवता का, कि वो बटलोई में चाहे इतना पकाए अनंत कोटि ब्रह्मांड को जिमा दे तो खत्म नहीं होगा कभी, क्योंकि सूर्य देवता सबको भोजन देता है। कैसे भोजन देता है, वो ऐसे भोजन देता है सूर्य के रस्सी से पेड़ के पत्तों में खाना बनता है, और वो पेड़ की पत्ती खाना बना करके पेड़ को देता है, डाली टहनियों को, जड़ में जाता है, जड़ से रस आता है किंतु खाना पकता है पत्तों में। ऐसे जितने अन्न है औषधियाँ हैं सब चीज़ ओ सूर्य देवता के कृपा से ही होता है, और पछता भी उन्हीं के कृपा से, उगता भी है पछता भी है। तो सूर्य देवता ने उनको वरदान दे दी, तुमको मिलेगा हाँ। तुम खा लोगे नहीं लोगे तब तक कितने उनको खिलाओ, और वो खा पी करके माँज करके बर्तन को उल्टा करके रख दी। अब बोले अब क्या करूँ, अब तो कुछ उपाय नहीं है, और नहीं कुछ व्यवस्था बनाओ, कुछ व्यवस्था बनाओ। बोल मैं अब क्या करूं, और इधर ऋषि आए, अर्जुन भीम सब लोगों उनके सेवा में लग गए। युधिष्ठिर महाराज बोले जाओ महाराज को बोलो स्नान करके आचमन करके आए, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। जब द्रौपदी को बोला, द्रौपदी बोला अब क्या करूं, द्रौपदी के पास एक ही उपाय है, कि मंत्र के द्वारा मंत्र तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान है और भगवान के द्वारा धर्म का पालन होता है, भगवान खुद पालन करते हैं। इससे जो भगवान का मंत्र और मंत्र देवता अलग नहीं है, मंत्र का जप किया और जैसे मंत्र जप किया भगवान प्रकट हो गए, और जैसे मंत्र जप करना है प्रभु आ गए। प्रभु बोले द्रौपदी कृष्णा आज मैं बड़ा भूखा हूँ, अभी मैं गया था भोजन करने, इतने में आसन बिछा दिया रुक्मिणी ने, सत्यभामा सब ने थाली परोस दी, किंतु मैं भोजन नहीं कर पाया क्योंकि तुमने मेरे को जप मंत्र के द्वारा बुला लिया। इसलिए नियम है यदि ब्राह्म मुहूर्त में मंत्र करेंगे तो मंत्र देवता को दुख नहीं होता। 8 बज गया 9 बज गया आप मंत्र लेके बैठ गए हैं, ये उपाय जप करने का टाइम नहीं है। शाम को भी ब्राह्म मुहूर्त में जप करने का विधि है और आप 3 बजे जप करने लग गए या कभी 12 बजे जप करने लग गए, कभी है जब मनाया जब ही मंत्र लेके बैठ गए, गायत्री लेके बैठ गए, ये कोई तरीका नहीं है। किंतु विपत्ति पड़े तो किसको याद करे, तो उनको याद तो कर लिया, आ तो गए और बोले भूखे आए दे खाने को दे। और प्रभु बोले प्रभु क्यों सता रहे हो और क्यों दुखी कर रहे हो, एक तो मैं खुद ही दुखी हूँ और आप ऊपर से और दुखी कर रहे हो, अब मैं कभी इससे भोजन नहीं करती, सारा दिन बीत जाता है तो आखिर में रात को जाके कभी मैं भोजन, आज पता नहीं क्यों मैं 3 बजे भोजन कर ली, अब तो कुछ बचा नहीं। बोले तेरे बटोरी लिया तो लाया, बोले देख तू मुझे मेरे को कुछ समर्पण करती है कि नहीं, जरूर करती हूँ। तो कैसे समर्पण करती है, बोले तुलसी दल दे करके और आपके लिए प्रसाद समर्पण करती हूँ। तो जो तुलसी दल मेरे को देती है, क्या भोजन मेरे को देती है कि खाली तुलसी देती है, इससे भी देखो चालाकी चतुर है कितना। हाँ भगवान के लिए बोल तुलसी दल देखिए, कहते हैं ये तो सर्वम कृष्णाय समर्पयामि या मंत्र पढ़ करके देते हैं, और तुलसी तो दे दी, वो वस्तु दे दिया कि नहीं, खीर बनाया, राबड़ी बनाया, बालूशाही बनाया, हलवा बनाया, तुलसी तो दे दी, किंतु बालूशाही हलवा या खिचड़ी या अन्न देते हैं कि नहीं। तो बोले मेरे को तुलसी दिया ना, दिया। तो देख बर्तन ला, जब बर्तन लाया क्या देखा, गर्म था भोजन प्रसाद तो तुलसी ऊपर में लगा दिया किनारे में बटलोई के, वो तुलसी बटलोई में ही चिपक के रह गया, उन्होंने माजा धोया और वो रह गया तुलसी उसी में ही। फिर उन्होंने नौकुन से खुरिस खुरिस करके बर्तन से, मिट्टी के बर्तन है, खुरिस करके निकाल लिया, खा लिया और पानी पी लिया, बोले तृप्तोष्मी। अब कह तो दिया तृप्तोष्मी, इधर दुर्वासा गए स्नान करके अन्नी करने, जब अन्नी करने लगा पेट फूलने लग गया, यहाँ तक हो गया। हाँ अब दुर्वासा बोलने भीम आ रहा है गदा लेके, शिष्यों को बोल रहे ऋषियों को, यदि वो देख लेगा ना अब नहीं जाऊँगा नहीं खाऊँगा मार डालेगा, भाग यहाँ से सरपट, बिल्कुल भागो, ऐसे उड़ान भरे कि जंगल जंगल छोड़ करके मंगल कहाँ चला गया कोई पता ही नहीं। तो युधिष्ठिर हंसने लग गए, क्या किया प्रभु आपने, बोले सबको भोजन करा दिया मैंने, मैंने भोजन कर ली, सबने भोजन कर ली, किसी बाकी थोड़ी रहा है, सबका हो गया। तो अब यदि कोई इस सेवा को प्राकृत ज्ञान करे तो मूर्ख नहीं है। इससे रूप गोस्वामी प्रभु ने कहा प्रापंची कतया बुद्धा हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु गत्यति, जस्तमता कृष्ण की सदा सर्वदा सेवा करती है। अब दुर्वासा ऋषि आकर के नखड़े करने लग गए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जोगीराज हूँ और तेरे बालक हो गया, तू गंदी हो गई, पहले तू पवित्र थी साफ सुथरा, जब से बालक हुआ तब से तू गंदी हो गई, अब तेरे छुआ हुआ खाएंगे नहीं, अन्न लेना देना है, बैठूंगा भी नहीं, जल भी नहीं पीऊँगी पीऊँगा। तो अब देखो लाला ने क्या करा, लाला तो गोदी पकड़ कर गए चढ़ना जानता है, हैं एकदम कंधे में बैठ कर गए, दाढ़ी मूंछों के बीच में जटा के हाथ घुसा करके मुंह में लड्डू भर दी, और वो भी झूठन लड्डू अपना खाया हुआ, क्योंकि उनके हाथ में सबसे लड्डू रहता है, किसी के हाथ में कुछ रहे चाहे ना रहे, वो ऐसे हैं बिना भोजन के उनको कुछ प्यारा नहीं। जगन्नाथ जी में जाओगे ना, उनको एक मिनट की दूर देर नहीं। अभी कोई खजा ला रहा है, कोई मालपुआ ला रहा है, कोई गजा ला रहा है, कोई कचौड़ी ला रहा है, कोई अन्न ला रहा है, दाल ला रहा है, खिचड़ी ला रहा है, एक मिनट की फुर्सत नहीं। हाथ धोया कि नहीं, पान छपाया कि नहीं, फिर भोजन आ गया। खाते 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 परेशान, क्यों बोलते, मैं यदि भोजन नहीं करूँगा विश्व भूखे रह जाएंगे। तो भगवान के पास सब समय भोजन तैयार है और लक्ष्मी देवी सेवा में सब समय रहता है। ऐसे लक्ष्मी को यदि कोई कहे कर्मी है, और ये प्राकृतिक सेवा करती है, तो वो माया के बंधन में ना कि कौन से दुनिया में जाएंगे। तो इससे कहते हैं भगवान के निकट ये प्रार्थना करना है, मुझे यदि कर्मी कहो, योगी कहो, ज्ञानी कहो, दुख नहीं है, किंतु प्रभु आपका सेवा से मुझे अलग मत करना। ये सेवा कर्म नहीं है। कर्म होता है कब? गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। देखो कर्मणि एक वचन है, दो वचन नहीं है, कर्मणि एव। तुम्हारा कर्म में अधिकार है। क्या कर्म? मैं हूँ और मेरा तुम भक्त या सेवक या दास हो, तो केवल मेरे लिए ही तुम कुछ कर सकते हो, किंतु फल की इच्छा मत रखो। यदि फल की इच्छा रखा तो स्वतंत्र हो जाओगे, हमसे दूर हो जाओगे, फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं रहेगा। और यदि तुम कुछ से नहीं मांगते हो तो पूरा जिम्मेदारी मेरा है। बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी चाकरी व्यापार वाणिज्य करता है, कमाता है, सारे पिताजी को दे देता है। अब पिताजी उसे कपड़े लत्ता खाना पीना लेना देना सब ध्यान रखता है। और बच्चा यदि अपने आप ही सब कुछ करता है, पिताजी को पूछता भी नहीं है, तब पिताजी का स्नेह ममता कम नहीं होगा, किंतु अब जिम्मेदारी अपना नहीं रख, वो अपने आप ही जिम्मेदारी संभालता है। तो यह भगवान कहते हैं फल के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा सेवा धर्म है, तुम सेवा करो। हाँ, किंतु यह सेवा और प्राकृतिक कर्म एक नहीं है। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं ये जो गोपाल बाल है, गोपाल हमारे, उनकी सेवा है ये प्राकृतिक कर्म के अंतर्गत तो नहीं है। यशोदा माता सुबह से लेकर के और ब्रजदेवियाँ सखा लोग दास लोग सारा दिन तन्मय होकर के सेवा में लगे हुए हैं। आप प्रभु कोई वन में फूल उठा रहा है, माला गुथ रहे हैं, कोई जाकर के गोबर का कांडा देते हैं, कोई गाय के दूध काट लेते हैं, कोई मिठाई बना रहा है, तो इसमें भक्ति कहाँ है, भजन कहाँ है, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वसुदेव महाराज जी ने जब पूछा हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तब नारद जी कहते हैं कि भगवान आपके पास में है, किंतु प्राकृत बुद्धि नहीं करना चाहिए। कहते मैं पहले कश्यप अदिति द्रोण धरा और कश्यप द्रोण धरा और तीन जन्म मेरा पहले हो चुका है, ये चौथा है, किंतु मैंने कभी मुक्ति के लिए सोचा ही नहीं। बोलते जब भगवान यदि अपने पुत्र के रूप में हमने प्राप्त किया भगवान को, किंतु भगवान के प्रति प्राकृत बुद्धि आ गया, भगवत बुद्धि रही नहीं। और इधर नंद यशोदा को सब दुनिया कहते हैं देख बड़े बूढ़े सब लोग, धीरे देख तेरा बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, तेरा बेटा भगवान है और स्वयं नारायण है, क्योंकि नहीं तो सात दिन सात रात गोवर्धन को कौन ग्रह सकता है। और देख तू उसका कान पकड़ता है, उसको डांटता है और क्या क्या करता है तू, अब आज से मत करना। और नंद बाबा बोलते हैं ग्वालाओं की बुद्धि 90 साल तक तो नाबालिग रहता है, 90 साल के बाद बालिग होता है, तो ये बुद्धि बुद्धि शुद्धि नहीं है। भगवान है तो क्या है, बेटा तो मेरा ही है, उसका लालन पालन करना, ताड़न बसन करना, यदि यदि कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो उसको डांटूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, बिगड़ जाएगा। तो नंद बाबा का जो ममता है, ये ममता और वसुदेव महाराज जी की जो प्रार्थना है मुक्ति के लिए, दोनों एक तात्पर्य पर है। मुक्ति का तात्पर्य है हम भगवान को छोड़ करके अन्यत्र यदि हमारा ममता लग गया, बंधन में पड़ गए, हम किसी के बंधन में आ गए, तो भगवान के प्रति भगवत बुद्धि या भगवान के प्रति सेवा बुद्धि नहीं रहेगा, बट गया है, बहुत जिम्मेदारियां हो गई। प्रभु हमारे पास है किंतु 24 घंटा प्रभु के सेवा में तन्मय होकर के अपने समर्पित हो जाना या सेवा करना, और नहीं तो बाह्यिक रूप में बहुत सारा और काम है, हम औरों में रम गए तो इसमें बहुत दरार पड़ जाए, वो फर्क पड़ जाता है। वो द्वारका के रानियाँ, उनके पास में 10-10 बेटा, एक एक बेटी है, और घर मकान है, नौकर चाकर है, नाती पोता हो गया, करते करते 56 करोड़ हो गया, इतने जदुवंशी है। ब्रज में यदि कृष्ण कोई किसी को कहे चाहिए तुम्हें एक बालक चाहिए, नहीं चाहिए, परिवार चाहिए, नहीं चाहिए, आप तो है, तो हमें और कुछ चाहिए नहीं। तो वसुदेव महाराज कहते हैं मैं प्रभु के पास आकर के भी एक भजन विषय नहीं वस्तु, एक भजनीय वस्तु, और एक वस्तु वैशिष्ट्य अपेक्षा नहीं, एक वस्तु वैशिष्ट्य अपेक्षा, एक वस्तु भजनीय वस्तु। कहते हैं भगवान को बहुत सुंदर सजा आज, देख सुनते वाह, हे प्रभु, स्तुति करने लग गए, आप तो लीलाधारी हैं, कैसे रंग रूप है आपका, कैसे सुंदर सजे हैं, खूब मंदिर सजाया, खूब भंडारा कर रहा है, खुश हो गया। और एक दिन आया तो देखा मंदिर में तो कोई है नहीं, भगवान का भी सिंगार भी नहीं है, सुंदर नहीं है, तो उस समय भोजन भी नहीं है, भंडारा भी नहीं है, तो बोलते ये मंदिर ही नहीं है, भगवान क्या है ये, इसमें तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो एक मूर्ति ला के रख दिया इन लोगों ने, ये तो कुछ भी नहीं है। तो कहते जबकि चमक दमक ठमक देखता है तो उनका भगवत बुद्धि होता है, और जब कुछ नहीं होता है, नहीं है, तो उनका प्राकृतिक बुद्धि होता है। तो अभी ब्रज में कृष्ण नंगे हैं, तभी कृष्ण से कृष्ण के लिए ममता कम है क्या, और द्वारका में समस्त आश्चर्य है, वो लोग आश्चर्य से अभिभूत होकर के भगवान के प्रति भगवत बुद्धि रखते हैं, सब स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, जहाँ वैशिष्ट अपेक्षा जहाँ पर सुंदर आश्चर्य नहीं है, वहाँ पर उनका मन हट जाता है। कैसे हुआ, जब द्वारकापुरी डूब गया समुद्र के अंदर में, सब लोग कहाँ चले गए, ब्रज में जब भीड़ पड़ी, इंद्र ने आक्रमण किया, देवताओं ने आक्रमण किया, तो क्या वो लोग सब ब्रज को छोड़ करके कहीं भाग गए, उनके उपाय भी कृष्ण ने कर दी, तो वहाँ कृष्ण को नहीं कर सकते, द्वारकापुरी कैसे डूब जाएगा, आप हमारी रक्षा करो, द्वारकापुरी को बचा लो, किंतु कहा भगवान ने करा क्या, किंतु ब्रजवासियों कैसे कर सकते हैं, वो कृष्ण के बिना किसी को नहीं जानते हैं, कुछ भी हो जाए आपके बला हम दूर नहीं जाएंगे, और हम जानते भी कुछ नहीं, समझते भी कुछ नहीं, तो कृष्ण क्या करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे कि नहीं। तो यहाँ जो ममता है, यदि कोई कहते हैं ममता ये बंधन है, हमें इससे मुक्ति मिलना है, तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं भाई इस मुक्ति के पास में मत जाओ, मरंग देव मोक्ष न मोक्ष बदिंबा, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति से ऊपर भी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बंधन शिकार है, हम सदा सर्वदा सेवा में ही, कौन से सेवा में, वो गोपाल बाल बाल गोपाल, क्यों बाल गोपाल वो तंग नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, आप थाली में दे दो, हथेली में दे दो, घंटे भी बजाने की जरूरत नहीं, आसन बिछाने की भी जरूरत नहीं, लाला कहने की भी जरूरत नहीं, मचलता है आता है और देता है तो हंसी से खुशी से लेता है और खाता है और खिला भी देता है, ये भी है। आप मंदिर विग्रह को भोग लगा देंगे ना, भले भोग के थाली वापस दे देंगे लेकिन हाथ में लेकर खिला नहीं देंगे, और उनको थाली भी नहीं चाहिए। कबल वित्र विश्वान बेनु, हाथ में अन्न है, दही है, आचार है, अंगुली के बीच में मिर्ची के टेंटी के, और वो खा रहे हैं और सखाओं को खिला रहे हैं, सखा लोग खा रहे हैं, उससे भी ले लिया, आधा पकौड़ी खा रहे हैं खींच के ले लिया, अरे इतना बढ़िया तू खा रहा है मेरे को नहीं दिया, अरे सखा मैं ढूंढ ही रहा था तुमको, वैसे तुम अंदर बैठे हो, अंदर खा रहे हो, और तुम बाहर भी आ गए हो, मैं तो तुमको अंदर देख रहा था, इसे अंदर डाल दे रहा था, वो तुम बाहर भी हुआ, चलो बाहर में भी खा लो, तो वहाँ कौन सा अड़चन है, पूजा है भाई। तो ये जो गोपाल बाल स्वरूप है, नारायण स्वरूप में गोपाल स्वरूप में बहुत अंतर है। नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम भाई, ऐश्वर्य परिपूर्ण, उनकी मर्यादा का थोड़ा यदि उल्लंघन हो जाए तो महाविपद है, भयानक हो जाएगा, निसिंह रूप ले लेंगे, किंतु हमारे गोपाल कभी निसिंह नहीं होंगे, और कोई डांट दिया तो रो लेंगे किंतु कुछ बोलेंगे नहीं, और कोई हंसेंगे तो गोदी चढ़ जाएंगे, किंतु किससे नाराज नहीं होते। तो कहते हैं यदि ये गोपाल बाल स्वरूप के साथ संबंध हो गया, अर्थात प्रीति हो गया, तो ये प्राकृतिक कर्म के अंदर नहीं है, ये मुक्ति की जरूरत ही क्या है और किसी वस्तु की जरूरत नहीं। अब जाकर के पांचवें श्लोक में कहते हैं, इदंते मुखम भुजम अव्यक्त नीलोई वृंतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्या मुहु सुमित बिंब रक्ताधरम में मनुष्य अभिरस्तम अलम लक्ष्म लाभ हुई। कहते इदंते मुखम भुजम अव्यक्त नीलोई, कहते भगवान की सनातन गोस्वामी टीका कर रहे हैं, कहते हैं जो इदंते मुखम्बुजम अव्यक्त नीलई, ये उनके जो मुखारविंद तमाल श्यामल वर्ण, किंतु उनके अनुराग अर्थात प्रेम का जो आकर्षण है मिनट मिनट में बदलते जाता है। कैसे बदल जाता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके निकट राधा रमन होकर के प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी उनकी आराधना करते हैं तो उनके निकट गोविंद रूप में प्रकट हो गए, और सनातन गोस्वामी के निकट मदन मोहन स्वरूप में प्रकट हो गए, मधुपंडित के निकट गोपीनाथ रूप में प्रकट हो गए, उनका क्या स्वरूप बदल गए, किंतु भक्तों की प्रीति के साथ साथ में भगवान के भावों का प्रकाश, स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। ये स्वरूप कोई साधारण नहीं है, असाधारण अनुराग का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जैसे एक ही लाइट है सब जगह में रोशनी दे रहा है, किंतु कहीं यदि ऐसे सुंदर रंगीन बल्ब के अंदर में लाइट को डाल दिया तो उसका कलर कुछ और दिखता है। तो भक्त लोग प्रीति के साथ अपने हृदय में भगवान को सजाते हैं, भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करके सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव ध्यान कर रहे हैं मधुबन में, गुरुजी ने कह दिया, नारद ऋषि ने, जाओ मधुबन में जाओ, क्यों, मधुबन में सदा सर्वदा हरि विराजमान है। कहते हैं अतो अहोबरा मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरियसी दिनमय कर निवासन हरभक्ति प्रजाति। वो मधुपुरी धन्य है जहाँ पर भगवान सदा सर्वदा वास करते हैं, रहते हैं। तो वहाँ जाकर के मंत्र जप करने लगे, छः महीना मंत्र जप किया तो भगवान अंदर में हृदय में उनको दर्शन दिया, तो कहते प्रभु छिप करके क्यों रह रहे हो, सामने आओ ना, डर किस बात की है, मैं बालक हूँ, कुछ मांग लूँगा क्या, हैं तंग करूँगा, क्योंकि बालकों से सब डरता है, बड़ों से कोई नहीं डरता है, बालक नाराज हो गया तो विपद, और यदि कुछ उदम करना शुरू कर दी तो बड़े लोग क्या करेंगे, क्या उसको कूटेंगे पीटेंगे, उससे लाभ क्या होगा, अपने गुस्सा चढ़ेगा, अपने दिमाग खराब होगा, कर्म बनाएगा, बीमारी हो जाएगा, तो अब क्या करें। तो भगवान हंस रहे, तो बोले प्रभु आप जो दर्शन देना है बाहर आओ ना, ध्रुव के अनुरोध से प्रभु जब बाहर आए, उनके रॉन्ग रूप देख करके उनका आँख चकाचौंध हो गया, वो भी नज़र नहीं मिला सकता, बोल नहीं सकता, एकदम घबरा गया। तो उस समय भगवान ने अपने शंखों को लेकर के मुखारविंद में स्पर्श करा दी ओंठों में, तब वो स्तुति करने लग गया। तो ध्रुव के जो भगवान हैं नारायण रूप में प्रकट हुए, और देवकी वसुदेव के निकट भी भगवान स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए, वही भगवान ब्रज में जब विराजमान है यशोदानंद के निकट, तो वहाँ पर उनके भगवत्ता का कोई प्रकाश नहीं है, और यदि प्रकाश करते भी हैं वो उनका कोई मतलब नहीं रखता है। कभी यदि विश्वरूप दर्शन करा भी दिया यशोदा माता को मुखारविंद में, कहते भूत लग गया, कहाँ से ब्रह्मराक्षस घुस गया इसके मुँह में, ए गोबर लाओ, गोमूत्र लाओ खिला दो, और ए ब्राह्मण को लाओ झाड़ दो, ए कुछ दान दक्षिणा दो, गाय के पूछ से झाड़ो, है उनके पास भगवत का कोई मूल्य नहीं है। गोवर्धन उठा लिया है, तो कहते गिरिराज जी उठा लिया तो कितना बड़ा काम कर लिया, बोले ये क्या गिरिराज जी को उठाएगा, गिरिराज जी उठ के खड़े हो गए, घर में छतरी था, बरसात हो रहा है, बटन दबा दिया छतरी टन गया, उसमें क्या है, ये कहने का क्या है, वो उसे थोड़ा प्रेम है सबकी, उनकी बातें सुन लेते हैं, मान लेते हैं, हैं उन्हें देखा यदि ब्रज में रहना है, सेवा भी करना है, तो उनका कोई मतलब नहीं रखता है। यदि उनने कालिया को नत दिया तो बोले क्या हो गया, एक सांप को नथा है और सफड़ा भी करता है, उसमें क्या है, उसका कोई मतलब नहीं रखता है। किंतु और भगवान के नारायण स्वरूप में आश्चर्य की प्राचुर्य होने से वहाँ पर आश्चर्य की तरह अभिभूत होकर के लोग दूसरे रूप में दर्शन करते हैं। किंतु जो प्रेमी भक्त है उनके निकट भगवान अपने भगवत्ता को प्रकाश करके भी, आश्चर्य प्रकाश करके भी उनको अभिभूत नहीं कर सकता। वो पैठा गाँव में जब गोपियाँ राशि अंतर्ध्यान हो गए तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते देखा नारायण स्वरूप में भगवान दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में, तो सब ने प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की हमें कृष्ण मिला दो, कहाँ मिलेंगे, ओ उनको कोई मतलब नहीं है। और जब श्रीमती राधा रानी आई तो क्या किया, ओ उन्हें उनके पेट में दो हाथ घुस गया, दो हाथ ही रहा, द्विभुज ही रह गए, चार भुज अब रहा नहीं, कहते पेट में बैठ गया, घुस गया नहीं, अर्थात राधा रानी के सामने उनका भगवत आश्चर्य का कोई प्रकाश नहीं, ब्रजवासियों के सामने इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्वच्छ और स्वाभाविक प्रीति है, इस प्रीति के आगे कोई आश्चर्य का मूल्य नहीं है, क्योंकि कुछ तमन्ना है चाहिए तब तो इसका मतलब है, तो चाहिए तो उसका मूल्य है, चाहिए ही नहीं है। तो वो जो प्रेम है इससे बतलाया प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान भूषीभूत होते हैं। इसके अलावा और जगह में भगवान भगवत्ता को अपने पास रखते हैं, इसको विलीन नहीं करते, भगवत्ता को नहीं छोड़ते, भगवत्ता उनके पास रहता है भगवान के पास, और यहाँ पर भक्तों के सामने भगवान के भगवत्ता ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। इसी कहते हैं इदंते मुखम्बुज मभुक्त नीलय वृंतम कुंतल स्निग्ध रक्तस्य गोप्या, गोपियाँ ब्रजदेवियाँ प्रभु को देख कर गोदी ले लेते हैं तो उनको गाल चूमते हैं, किंतु कुंडल क्या कर रहा है, सब समय दुदुल्यमान, सब समय उनको गाल चूमते हैं, किंतु वो कुंडल का चुम्बन करना और गोपियों का जो चुम्बन करना इसमें कितना फर्क है। किंतु कृष्ण को बड़ा अच्छा जब कुंडल हिलता है, गाल में चुम्बन करता है, तो क्या सोचते हैं, ओ ये ब्रजदेवियाँ सब आकर के मुझे चुम्बन कर रहे हैं, और सुंदर मुखकमल में इतना घुंघराले बाल है ऊपर से, और उनके आँखों कैसे हैं, कहते हैं अरुण मनोहर, सुंदर कमल नयन कमल कम, हाँ। तो भगवान यदि कहते हैं कुछ वर ले लो, कहते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आपकी जो सुंदर स्वरूप है सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हमें और दूसरे कुछ वस्तु की कोई प्रयोजन नहीं, आकांक्षा भी नहीं है। तो भगवान के साथ बस कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये पूर्व पूर्व ऋषि और आचार्यों ने, विशेषकर सत्यव्रत मुनि और आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने आराधना की, तपस्या की, और आकर के दंडकारण्य से ब्रजमा के जन्म ले ली भगवान की इच्छा से, किंतु आने पर भी और तपस्या करने पर भी नित्य सिद्धों के संग के प्रभाव से वो साधन सिद्ध से अपने स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। अब हम लोग काल सुनेंगे अगला गौर प्रमाण। हरि हरि।